स्मिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च दानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय भक्त्याविहीना अपराधलक्ष्यै चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते शरणं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयम् आज आप लोगों का परम सौभाग्य है कि लगभग 7 दिनों से आप लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं और कर रही हैं। कृष्णचंद्र ही कलियुग में श्रीमद् भागवत के रूप में अवतीर्ण हैं। कृष्ण और भागवत में कोई भी अंतर नहीं है। कृष्ण का दर्शन करना और भागवत का श्रवण करना एक ही बात है, किंतु इसको भी समझिए, जैसे कृष्ण को तो कंस ने भी देखा, दुर्योधन ने भी देखा, जरासंध ने देखा, बहुत से लोगों ने देखा, किंतु देख करके कृष्ण को उनको आनंद नहीं हुआ। कृष्ण को उन्होंने अपना शत्रु माना, पुतना अगासुर बकासुर कृष्ण को मारने के लिए गए, तब कृष्ण के दर्शन से ही नहीं कुछ सब कुछ हो जाता। ऐसे भागवत का श्रवण करने से ही नहीं होगा, उनकी सेवा की भावना से उसको हम सुनेंगे। परीक्षित महाराज जी के सभा में जब उनके 7 दिन में मृत्यु आने वाली थी, तो वहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी कर्मी योगी तपस्वी ऋषि मुनि गृहस्थ सब आए, अकेले 60,000 सब ऋषि लोग थे, सब लोग वहाँ पर पधारे, सबने सुना, किंतु परीक्षित की जो गति हुई उन लोगों की वो गति हुई, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में गोकर्ण और धुंधकारी की बात सुनी होगी। धुंधकारी के मर जाने के बाद में गोकर्ण जी ने भागवत सुनाया, एक बांस 7 गांठ वाले उसको बंद कर दिया उसमें और सुनाया, प्रतिदिन उसकी एक एक गांठ फट जाती थी और अंतिम दिन में उसकी मुक्ति हो गई और विमान में चढ़ करके वो बैकुंठ लोक को गया, किंतु और जो वक्ता और श्रोता दोनों सभी लोग रह गए, हजारों लाखों लोग, उनका किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? केवल कान से सुन करके इधर से निकाल देने से वो भागवत का सुनना नहीं हुआ, सुन करके उसके जीवन में हम अपने को प्रतिष्ठित करेंगे, उसे हम मानेंगे, उसके जीवन उसके उपदेशों को अपने जीवन में लाएंगे, तब तक कुछ उसमें कार्य होगा। भगवान जैसे वंशाकल्पतरु हैं, श्रीमद् भागवत भी वैसे वंशाकल्प, जो कुछ भी कोई कामना करेगा उसकी समस्त कामनाओं को भागवत पूर्ण कर देंगे, उसके श्रवण करेंगे। यदि कोई चाहे हमें पुत्र हो, धन हो, स्वर्ग हो, संसार के सुख हो, शांति हो, सभी कुछ वो दे सकते हैं, किंतु इससे भी अधिक दयालु ये श्रीमद् भागवत या कृष्ण हैं। हम 20 मांगने पर भी वो 20 नहीं देंगे, इसलिए वो लोग मूर्ख हैं जो स्त्री पुत्र परिवार संसारिक सुख के लिए भागवत पढ़ते और सुनते हैं। परीक्षित महाराज जी को जबकि ये अभिसंपात हुआ, 7वें दिन से ही सांप से काटने से तू मरेगा, घर बार छोड़ दिया, उनके अंदर में क्या कामना रह गई? घर बार स्त्री पुत्र परिवार सब तो छोड़ करके गए, और उनके गुरु भी ऐसे मिल गए, कौन? सुखदेव गोस्वामी जी। कैसे? जिनको कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है, जब भागवत पाठ होगा तो हमको कपड़े कुछ चढ़ाएंगे लोग, उनको जरूरत थी तो पहनते ही नहीं, भोजन करना तो वो तो भोजन तो करते ही नहीं थे, पानी पीना, पानी को उनको प्यास नहीं थी, नंग धड़ंग वहाँ पर उपस्थित हुए। जिसको कोई भी कामना नहीं है, बस एक कामना है, कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम कैसे हो। और सुखदेव गोस्वामी का भी वैसे, परीक्षित महाराज जी का वैसे। ऐसे योग्य व्यक्ति लोग यदि भागवत को सुनेंगे तो उनको इसी जन्म में ही भगवान के चरणों में प्रेम होगा, इससे बढ़कर के जगत में और कोई चीज नहीं है। भागवत श्रवण करने का एकमात्र यही फल है। जो मूर्ख लोग हैं वो तो धन जन पुत्र परिवार मुक्ति और स्वर्ग की कामना भागवत से करेंगे, आज बुद्धिमान है, परम बुद्धिमान है, भागवत के चरणों में वही प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? जो भागवत का प्रतिपाद्य विषय है, गोपियों ने किस प्रकार से कृष्ण को अपना लिया और उनकी सेवा प्रेम से की, वैसे ही सेवा हमको मिले, इसके अतिरिक्त कोई भी चीज की कामना रहे तब तो हो जाएगा। इसलिए आप लोग उस रूप में पढ़ेंगे, सुनेंगे। हम लोग प्रणामी हमें आ जाएगी, इसके लिए हम लोग यहाँ पर भागवत पाठ करने इसलिए नहीं आए हैं, और सब जगहों में होता है प्रणामी के लिए चढ़ावा आएगा, पहले से ऐलान कर देते हैं जो रुक्मिणी का विवाह में इतना खर्च होगा और सुदामा जी के चरित्र में ये खर्च होगा और अन्नकूट में ये खर्च होगा, हम लोग के लिए कोई खर्च नहीं है, बस आप लोग हरी कथा सुनिए बस, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, न हमको कुछ चाहिए, बस चाहिए यही आप लोगों का कृष्ण के चरणों में मति हो, जो भागवत श्रवण करने का फल है, और कुछ नहीं हम लोगों को चाहिए। यदि एक आदमी भी, इतने आदमी जो सुन रहे हैं उसमें प्याज लहसुन मांस मछली मदिरा सिगरेट धूम्रपान सब छोड़ करके गले में तुलसी लेकर के और भगवान का भजन करना आरंभ कर दे, एक आदमी भी इनमें से, तो हम समझेंगे कि हमारा भागवत कहना और आप लोगों का भागवत सुनना ये सार्थक हुआ। और यदि ऐसा नहीं कर सकेंगे तो समझेंगे आप लोग ऐसे ही मनोरंजन के लिए जैसे आते हैं ऐसे मनोरंजन की आवश्यकता है। भागवत सुनने का ये फल रहेगा, संसार के जितनी बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़ करके अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके माता पिता का आदर करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे और भगवान का भजन करेंगे, इस तरह से हम लोगों को सुनने का ये फल है। हमारे व्यास जी आप लोगों ने सुना होगा, वेद का भी भाग किया, उन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे जिसमें स्त्री शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय सन्यासी सबका अधिकार है। वेद स्त्रियां नहीं पढ़ सकती क्योंकि बहुत कम लोग पढ़े, बहुत कम लोग ऐसे हैं, जैसे कि प्राचीन काल में कुछ थी, वैसे यदि कोई हो तो उसके लिए अधिकारी है, नहीं तो शूद्र मानी जो सब समय सांसारिक वेशों में फंसा हुआ है वो वेद का अधिकारी नहीं है। इसी तरह से किंतु महाभारत में सबका अधिकार है, गीता में सबका अधिकार है, ऐसे ग्रंथ लिखे, वेदांत समस्त उपनिषदों का सार उन्होंने लिखा, पुराणों को उन्होंने प्रकाश किए, किंतु फिर भी उनका चित्त में खेद था, चित्त प्रसन्न नहीं था। समस्त धर्म संप्रदाय के गुरु व्यास जी हैं, सबको शिक्षा देने वाले, सब कुछ उन्होंने लिखा, किंतु उनका चित्त खिन्न रहा, प्रसन्न नहीं हुआ। इतने में गुरु जी आ गए उनके, वो गुरु जी नारद जी। गुरु जी से उन्होंने पूछा कि हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, कहने तुमने तो सब प्रकार की शिक्षाएं विश्व को दिया और जगत के लोग तुमको गुरु कहते हैं, तो तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है। मैं वैद्य हूँ परमार्थ का, इसलिए मैं बतलाता हूँ, सुनो, तुमने ऐसा किसी ग्रंथ में कृष्ण की आराधना की बात नहीं लिखी, तुमने कृष्ण को ये महिमा बतलाया जो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर कृष्ण हैं। तुमने ऐसा कहा कहीं? दुर्गा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, कभी शंकर जी सबसे श्रेष्ठ हैं, कभी बतला जी ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। किसी शास्त्र में ऐसा लिख दे गणेश जी की पूजा नहीं करने से धनजन पुत्र परिवार नहीं मिलेगा। कभी संतोषी मैया की बात आपने लिख दी, लोगों को भ्रम भ्रम में डाल दिया, आपने स्पष्ट नहीं बताया। जो शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, समस्त देवता लाखों आराधना करके भी जिन कृष्ण का दर्शन नहीं पा सकते, उनकी कृपा नहीं पा सकते, उस कृष्ण का आपने लीला चरित्र नहीं लिखा। आपने ये नहीं लिखा कि गोपियां कैसे कृष्ण की आराधना करती हैं। जो यशोदा मैया को महाभागा बतलाया गया, नंद महाराज को महाभाग बतलाया गया, उनके समान बड़भागी कोई नहीं कि अपनी गोदी में परब्रह्म को, जो ईश्वर जगत की सृष्टि करने वाले हैं, उन ईश्वरों को भी ईश्वर हैं और उनको अपनी गोदी में ले रहे हैं नंद बाबा। जो यशोदा मैया गोदी में लेकर के अपना तन दान कर रही हैं, करोड़ों यज्ञों के फल से जो तृप्त नहीं होते, वो ललक रहे हैं अपनी यशोदा मैया का दूध पीने के लिए। आज यशोदा जी कहें नहीं, तुम जाओ यहाँ, तुम्हें गोद नहीं लूंगी, तुम्हें दूध नहीं पिलाऊंगी, तू नटखट हो गया है, तू घरों में जाकर के चोरी करता है मक्खन और सब बोलहन हम उसे देती हैं, समझ करें। और वो ब्रह्म छटपट करके मिट्टी में लौटते हैं उनका दूध पीने के लिए। यहाँ पर आराधा कृष्ण आराधक बन जाते हैं और गोपियां बन जाती हैं आराध्य, मैया को खुश करने के लिए चेष्टा करते हैं, रोते हैं, जैसे बच्चों का अस्त्र होता है रोना, कृष्ण रो रो करके मैया की गोद में चढ़ना। यही नहीं, आपने ये तो नहीं लिखा कहीं, जो समस्त जगत के आराध्य हैं, सब लोग जिस कृष्ण की आराधना करते हैं और वो राधा जी के चरणों में पैया पड़ते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए लाख चेष्टा करती हैं, आपने लिखा कहीं? इसलिए वंदे नंद ब्रजेश्वरीनां पाद रेणुम अभिक्षणसा हरि कथां जासा पुनाति भुवनत्र आशामहो चरण रेणुका। सुखदेव गोस्वामी की कृष्ण की वंदना नहीं कर रहे, गोपियों के चरणों की धूलि की वंदना कर रहे। भागवत का प्रतिपाद्य विषय ये है, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जिस प्रेम के द्वारा मुग्ध होकर के कृष्ण उनके चरणों में क्षमा मांगते हैं राधा जी की, राधा जी की प्रसन्नता करते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य ये सब चीजें। आपने तो कहीं नहीं लिखा ये सब, इसलिए आपका मन प्रसन्न कैसे हो? इसलिए कोई आजकल अभी नव दुर्गा का दिन शायद चल रहा है, आज अष्टमी है या नवमी, अष्टमी है ना, अष्टमी की पूजा होगी, सभी लोग इस पूजा को करें। किस लिए करते हैं? करते हैं किस लिए? दुर्गा जी का जन्म है या क्या है? यह है, उन्होंने महिषासुर का वध किया था। किस लिए महिषासुर का वध किया? बड़ा भारी पापी अत्याचारी था, जगत का जंजाल था, जगत के लोगों को त्रस्त कर रखा था, किसी को जीने नहीं देता था, देवताओं को भी त्राही त्राही लग गई उसके मारे में। जिसकी सुंदरी स्त्री को पाता उसी को पकड़ ले जाता अपने घर में, जिसका कोई धन देखता वो धन हड़प लेता, राज्य हड़प लेता, लोगों को मार डालता, इसे संसार के लिए त्रस्त थे। यहां तक कि शंकर जी भी उसका वध नहीं कर सके, ऐसा दिल था। दुर्गा जी ने उसका वध किया, इसलिए दुर्गा जी की आराधना होती है। किंतु ये दुर्गा जी जिसकी आराधना करती हैं वो कौन है, किसकी शक्ति से ये सब करती हैं? कृष्ण की आराधना से करती हैं, कृष्ण की ये छाया शक्ति हैं, मूल शक्ति राधा जी हैं, राधा जी की ये छाया हैं। वो जब इतना शक्तिशाली हैं तो राधा जी कितनी शक्तिशाली होंगी, ये मत समझेंगे कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया। गोवर्धन धारण किसने किया? उनकी शक्ति ने किया। वो शक्ति कौन है? राधा जी। इस सब को समझ करके राधा कृष्ण की यदि आप लोग उपासना करेंगी तो आपका सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, अन्यथा रावण ने लंका में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा की थी और शंकर जी की, और उसी के बल पर उसको 10 सिर हुए थे और काटने से और बढ़ जाते थे। उसको मारने वाला पृथ्वी में कोई नहीं था। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किया सीता जी का पता लगाने के लिए, तो लंकेश्वरी ये दुर्गा जी अपने एक रूप में थी, उन्होंने हनुमान जी को देख लिया। मशक समान रूप धारी ली, मशक माने मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप बनाया और लंका में प्रवेश किया। किंतु वो ऐसी थी कि उसने पता देख लिया कि तू कहाँ जा रहा है, तो हनुमान जी बस खड़े हो गए, मैं जा रहा हूँ सीता देवी को मैया का पता लगाने के लिए। तो लंका में तुम कैसे घुस आए, हमारे इजाजत के बिना कोई नहीं घुस सकता, तो आप इजाजत दे दीजिए मुझे, मैं जाऊँ। क्या मैं इजाजत नहीं दे सकता, आज्ञा नहीं दे सकता। अच्छा तो ठीक है, आप नहीं दे सकती तो ये उपहार आपको देता हूँ, इस उपहार को लेकर के आप जरा भट जाइए। ऐसा करके एक मुँह का ऐसा मारा पीठ पर, गिर गई। गिर गए कहते अरे मुझे याद आई, भगवान ने हमसे कहा था जिस समय एक बंदर तुम्हें मारे और मूर्छा आ जाए तो उस समय लंका को छोड़ देना, अब लंका का भला नहीं है, रावण मारा जाएगा, उसके 1,00,000 पुत्र मरेंगे, 1,25,00,000 नाती मरेंगे, कोई दिया बत्ती देने के लिए नहीं रह जाएगा। तो शंकर जी की तो उपासना करता था, दुर्गा देवी की उपासना करता था, किंतु हुआ क्या, कोई वंश में रहा विभीषण केवल रहे और कोई नहीं रहा। इसलिए जो भगवान की सेवा करेगा, लक्ष्मी जी दुर्गा जी सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। दुर्गा जी को प्रसन्न करने का एक सस्ता सहज औषधि है, यदि उनके आराध्य को कृष्ण को राधा जी को प्रसन्न कर लिया जाए अपने आप प्रसन्न। दुर्गा जी किसी का सिर मांगती हैं और रक्त मांगती हैं, लोग बलि चढ़ाते हैं, ये सब गलत। यदि आप राधा कृष्ण की सेवा करेंगे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, इसका अतिरिक्त तो उनको प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए आजकल ये सब चीज़ें ठीक रहनी चाहिए। ये जो अभी का दिन है, अभी दशमी आ रही है, रामचंद्र जी को पता लगा हनुमान जी लंका से लौटे, और लौट करके उन्होंने रामचंद्र जी को सीता जी की मुद्रिका दी जो उनके हाथ से लिया। राम ने उस मुद्रिका को हाथ में लेते ही उनका हृदय द्रवित हो गया, आंखों में आंसू छा गए। तुमको कहाँ मिला, तो मैया ने दिया तुम्हें देने के लिए। इसके बाद में ये निश्चित हुआ कि अब लंका पर चढ़ाई करनी है, तो ये 9 दिन उनको निश्चित करने में लगे। 9 दिन उनको निश्चित करने में लगे कैसे किस रूप में कैसी सेनाओं को संग्रह करके हम लंका में चढ़ाई करें। और विजयादशमी के दिन क्या किया, किष्किंधा से पंपा सरोवर जहाँ था, जहाँ राम लक्ष्मण रहते थे, वहाँ से समस्त सारी बंदरी बंदरों की सभा और ऋषियों की सब सेना को लेकर के आज के लिए कूच किया, विजय के लिए प्रस्थान किया लंका के लिए। इसलिए इसका नाम है विजयादशमी। इसके लिए विजय, लंका जी में को विजय करने के लिए, सीता जी को लाने के लिए ये आज विजय के लिए यात्रा की। असल में ये तो था, किंतु धीरे धीरे लोग महान स्वार्थी होते गए, भगवान की उपासना भूल करके अपने धन जन पुत्र परिवार के सुखी होने के लिए उन्होंने दुर्गा जी की उपासना करनी आरंभ कर दी और घर में राम को भूल गए। इसलिए इन दिनों में रामायण का पाठ होना चाहिए, राम की पूजा होनी चाहिए, और उनके भक्त दुर्गा जी को भी लीजिए, कोई हानि नहीं है। इस तरह से हम अपने जीवन को भगवान के भजन में प्रतिष्ठित करेंगे। तो मैं भागवत के संबंध में बतला रहा था, व्यास जी को नारद जी ने कहा तुमने ये सब चीज़ें लिखी नहीं, इसे तुमको शांति नहीं मिल रही है, तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है, इसलिए तुम स्पष्ट रूप में लिखो ये समस्त भगवानों के भी, समस्त ईश्वरों के भी परमेश्वर आदि अनादि ये कृष्ण हैं, उनकी शक्ति राधा जी हैं, इसका वर्णन करो। उन्होंने कहा जी मैं कैसे वर्णन करूं, अच्छा तो देखो मैं बतलाता हूँ, भक्ति के योग के द्वारा अपने चित्त को स्थिर करो। कैसे भक्ति योग? भगवान का नाम कलयुग में, कलयुग केवल नाम है, नाम करते करते तन्मय हो जाओ, भगवान का चिंतन करते करते उनके चरणों में अपने को समर्पण कर दो और उन पर छोड़ दो, देखो तुम्हारे ऊपर मैं कृपा करूं। जब तक अपना और ये मैं हूं मेरा हूं तब तक नहीं, उनके ऊपर मैं संपूर्ण से छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, संपूर्ण से हमारे ऊपर में निर्भर करो। और तब ददामि बुद्धि योगम ते जैन माम भूयन्ति, तब मैं बुद्धि योग दूंगा, बुद्धि योग माने भक्ति योग, और उसके द्वारा तुम हमको पास। जब तक ऐसा नहीं करोगे, उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने अपश्चत पुरुषम पूर्ण, उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा। किसको देखा? कृष्ण को देखा, यशोदा मैया को देखा, नंद बाबा को देखा, सारे ब्रजवासियों को देखा, राधिका जी सहित समस्त गोपियों को देखा, और बाल्य से लेकर के द्वारका लीला को समस्त हाथ में रखे आमा की भांति उन्होंने दर्शन किए, और उसी को श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। जो लोग भगवान को भूलकर संसार के चौरासी में पड़ जाते हैं, फेर में पड़ जाते हैं, वो माया उनको पकड़ लेती है और जन्म मरण के चक्कर में लगा देती है। ठीक है। और जो लोग संसार को दुखमय समझ कर, अभी कैसे दुख समझ करके, अच्छा यहाँ पर सब 70 वर्ष से कोई बूढ़ी है अधिक या बूढ़ा, वो संसार को समझ रहा होगा कुछ कुछ, कितना सुख है। अब बूढ़ी बुढ़ापा अवस्था है, और यदि कहा जाए तुम 100 वर्ष और जियो, कहा जाए प्रभु हमको जल्दी से ले लें, क्यों? बहू और लड़के आदर नहीं करेंगे, नाती आदर नहीं करेंगे, ताना मारेंगे, शरीर अच्छा भोजन मांगेगा किंतु हजम नहीं कर सकेगा, धीरे धीरे शरीर एकदम जरट हो जाएगा, इसलिए इसमें जीवन में सुख नहीं है। आप जिसके लिए भलाई करते हैं वो आपके लिए बुराई करेगा, जरूर करेगा, इसलिए संसार को दुखमय जान करके उससे उपरत होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो इस संसार को छोड़ करके भगवान के चरण कमलों में, बैकुंठ में अथवा गोलोक वृंदावन में नित्य स्थिति होती है और आनंद उपभोग करते हैं। और जो लोग भगवान को भूल करके इस संसार में आते हैं वो दुख प्राप्त करते हैं। इस तरह से उन्होंने भागवत को लिखा, जो देखा उसको लिखा। तो जो लोग ऐसा समझ करके भागवत को सुन करके, जो लोग प्रहलाद महाराज की तरह भगवान का भजन करें, अभी प्रहलाद महाराज जी का जीवन सुना होगा, उसके पहले आप लोगों ने सुना होगा पुरंजन का उपाख्यान, भवाटवी का उपाख्यान, कपिल देवहूति का संवाद, क्या चीज है? एक कोई राजा, बड़ी सुंदरी स्त्री और अच्छे बच्चे, बड़ा अच्छा महल, किंतु वो तृप्त नहीं हो सका, और संसार में इन चीजों को भोग करने के लिए कोई अधिक अच्छे महल में जाना चाहता था। वन में पहुंचा और वहां उसको एक बड़ा सुंदर महल मिला, 9 द्वार का, और उसमें बड़ी सुंदरी एक पत्नी भी मिली। नहीं मत जलाओ, मत जलाओ, ये सब उसको मिली किंतु उसे सुख नहीं हुआ। आपने विस्तार पूर्वक सुना होगा, ये संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये सब आते हैं। तो भागवत सुन करके विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, उसने भागवत नहीं सुना। सीधी सी बात है, भागवत को सुन करके संसार के पचड़े से आप लोगों को वैराग्य नहीं हुआ और संसार करेंगे। हमारा एक बेटा है, 5 बेटे हमारे हों, 10 बेटे हों, धृतराष्ट्र जैसे 100 बेटे हों, क्या होगा? सोने की लंका बन जा रही तो क्या होगी? इसलिए संसार से वैराग्य हो और असल में उसको भगवान के चरणों में प्रीति हो, यदि प्रीति नहीं है तो प्रीति वो कैसे होगी? भागवत में इसका वर्णन किया गया है। कपिल देवहूति का संवाद आपको इन्होंने सुनाया होगा, जन्म से लेकर मरण तक के में जीव की क्या दशा होती है जो भगवान को भूलते हैं, ये बतलाया होगा। मैया के पेट में सिर नीचा पैर ऊपर कस करके बांध कर पीप रक्त और गंदी चट्टी के अंदर में फंसा रहता है। भगवान से प्रार्थना है, प्रभु निकालो इस नरक से, वो साक्षात नरक। अभी यदि आपको कोई ठूस करके उसमें बांध करके डाल देते एक मिनट में मर जाएंगे। ऐसी ऐसी घोर दशाएं होती हैं। और फिर जहां जन्म होता है वो माता और पिता और बहन के गोदी में खूब हंसता उछलता कूदता है, पढ़ता लिखता व्यवसाय वाणिज्य में फंस करके असल में भगवान का भजन भूल जाता है, ये भी सुनाया होगा। इसके बाद में और सब उपाख्यान बतलाए गए हैं, ये सुनाया होगा। ये सबको समझ करके करने की चेष्टा ऐसा करेंगे। इसके बाद में दसम स्कंद में पूतना को कृष्ण ने कैसे मारा, किस प्रकार से उन्होंने जन्म लिए, तृणावर्त अगासुर बकासुर इत्यादि का वध किया। हमारे अंदर में ये सब चीजें हैं, अगासुर बकासुर, यह काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये सब असुर हैं। यदि आप कृष्ण के शरणागत होंगे तो बलदेव प्रभु जी गुरु के रूप में, गुरु कौन है, बलदेव प्रभु जी अखंड गुरु तत्व है। जहाँ भगवान का शरणागत होंगे, हे प्रभु मैं भजन नहीं कर सकता, हमारे अंदर में बहुत से अनर्थ हैं, बलदेव प्रभु जी गुरु के रूप में प्रकट होकर के तुम्हें शिक्षा दे करके दीक्षा दे करके भगवान के चरणों में लगा देंगे। आपने सुना होगा धेनुकासुर, धेनुकासुर माने गधा, धेनुक माने गधा। गधा क्या, भगवान को भूल जाना ही ये गधापन है। और संसार में गधा क्या करता है, लोगों के गंदे कपड़े पीठ पर लेकर के घाट तक जाता है और उसे खूब अच्छी तरह से लाभ देते हैं। यहाँ तक कि ईंट ढोने वाले लोग गधों को चार ईंटों पर खड़ा कर देते हैं, खच्चर जिसको कहते हैं, और उस पर लाद देते हैं ईंटा। लाते लाते जब ईंट टूट जाए तो समझो जैसे ये पूरा भार हो गया और उसको लेकर के चलते हैं। जिस चीज को कपड़े ले जाता है वो अपने आप नहीं पहन सकता, गुड़ और चीनी ले जाता है घी, किंतु अपने आप नहीं खाता, केवल घर का कुत्ता नहीं, वो गधा घर से और घाट तक जाएगा अब फिर लौट आएगा। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, ऐसे गुरु भगवान का भजन जो शिक्षा नहीं देते वो सब गधे के समान हैं। जो कुछ है मेरे खाने के लिए भोजन करने के लिए है, इसलिए वो ताल के पेड़ों को बड़ी सावधानी से रक्षा करता और कोई भी भक्त और ब्रजवासी नहीं प्रवेश कर सकता था। कृष्ण और बलदेव जी गए, बलदेव जी ने उसके पैर पकड़ के मारकर उसे, ये अज्ञानता है, मूर्खता है। गुरु जी ऐसे हमारे हृदय में जो संसार की वासनाएं और कामनाएं हैं ये गधे के समान है। गुरु जी इस प्रकार से उनको मार करके और अज्ञानता को, तो कितना आधा घंटा हुआ, इसी तरह से उन्होंने वर्षासुर इत्यादि का वध किया। और इसके बाद में फिर मथुरा में आए, कंस का वध किया, चारुमस्तु का वध किया। इसके बाद में कुछ दिनों रहने के बाद में द्वारका की लीलाएं हैं, अभी उसका थोड़ा थोड़ा उसमें जो शिक्षाएं हैं मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। अभी एक कीर्तन थोड़ा सा कर जय श्री। देखो कृष्णचंद्र जी देखने में तो छोटे से ग्वाल बाल हैं, यशोदा के लाल हैं, किंतु ब्रह्मांड के नियंता करने वाले लोगों को भी ये नियंता है। ये पूजा पाठ से, दान से, यज्ञ से या और कोई तपस्या से, चाहे आप जगत का दान कर दीजिए, अपने को दान कर दीजिए, तभी उनको हम बांध नहीं सकते हैं प्रेम में। यशोदा मैया ने उनको किस प्रकार से बांधा, वो भावना अपने में लाने की चेष्टा करेंगी। कृष्ण छोटे से बच्चे हैं। एक दिन यशोदा मैया पलंग पर लेकर के उनको सोई थी। 4 बजे यशोदा जी उठी और बच्चे को पलंग पर रख करके नीचे चली गई और दधि मंथन करने लग गई। दधि मंथन करते करते अपने बेटे की जो बाल्य लीलाएं हैं उनका छंदोबद्ध कर गायन करने लगी। दधि मंथन करते हुए दधि के पात्र में जो मंथन चल रहा है उससे जो आवाज निकल रही, मानो मृदंग का पिछला भाग, हाथों में चूड़ी और कंगन है, वो मधुर करताल जैसा। अब जब कृष्ण की मैया है तो कितनी सुंदरी होंगी, सूक्ष्म वस्त्र पहनी है। दधि मंथन से पसीने के बूंदे मानो मोती झर रही हैं, केस खुल गया है, फूल उसमें से भी गिर रहे हैं और तन्मय होकर के गायन कर रही हैं। का ज्ञान कर रही हैं? गोविंद दामो धर्म धवेशी, गोविंद दामो धर्म धवेशी, गोविंद दामो तन्मय हो गई, सब कुछ भूल गई,